हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय चल रहा है। अर्जुन प्रथम अध्याय से लेते हुए दूसरे अध्याय में भी अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने सबसे प्रबल तर्क प्रस्तुत किया पिछले श्लोकों में जो हमने लिए, जहां अर्जुन गुरुद्रोण और भीष्म पितामह इनकी तरफ इशारा करते हुए भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, कि जो ये महान अनुभव वाले हैं मेरे गुरु, क्या आपके गुरु को इस प्रकार से प्रहार करोगे बाणों से? तो पिछले श्लोक में हमने लिया, अर्जुन इन प्रबल तर्कों को प्रस्तुत करने के पश्चात और भ्रमित हुए। हालांकि उनकी तरफ से ये बहुत प्रबल तर्क था, परंतु अब अर्जुन और भ्रमित हो रहे हैं, और इसलिए पिछले श्लोक में अर्जुन की मनस्थिति क्या थी? छठे श्लोक में अर्जुन कौन सी मनस्थिति में थे? दुविधा मनस्थिति। अर्जुन की दुविधा मनस्थिति। दुविधा मनस्थिति किसे कहते हैं? क्या इसे मैं करूं या ना करूं, इसे कहते हैं दुविधा मन स्थिति। और हमने भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर दुविधा मन स्थिति की चर्चा की, याद है आपको? भौतिक स्तर पर दुविधा मन स्थिति किसे कहते हैं? हाँ, सही या गलत, सही गलत में पहचान कर पाना। और आध्यात्मिक स्तर पर दुविधा मन स्थिति है सही, दो सही चीजों में, सही और ज्यादा सही चीज। जैसे कि यशोदामयी का उदाहरण हमने लिया। तो यहां पर अर्जुन के सामने, अर्जुन समझ रहे हैं कि ये आध्यात्मिक दुविधा मन स्थिति उनकी है, कि दो सही चीजें हैं, युद्ध करना या युद्ध से पलायन, युद्ध से भागना। अर्जुन को लगता है कि ये दो सही स्थितियां हैं, परंतु अर्जुन ये नहीं पहचान रहे कि युद्ध से छोड़कर जाना, पलायन होना, ये कोई आध्यात्मिक स्थिति नहीं है, ये भौतिक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस दूसरे अध्याय में अर्जुन को मूढ़ या मूर्ख कह रहे हैं, जो अर्जुन का ये जो प्रस्ताव उन्होंने रखा सामने। अब अर्जुन इस स्थिति में आ गए हैं कि ये जो आज का श्लोक है वो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, कि वो एक ऐसी मोड़ की स्थिति है, ऐसा मोड़ अब अर्जुन लेने वाले हैं। हालांकि अर्जुन ने कुछ ज्यादा सोच विचार कर ये श्लोक, सातवां श्लोक नहीं कहा, परंतु फिर भी जो अर्जुन के मुख से ये श्लोक निकला, जिसके वजह से भगवान के मुख से पूरी गीता निकली, भगवान ने पूरी गीता अर्जुन को सुनाई, अर्जुन शरणागत हुए, युद्ध अर्जुन ने किया, युद्ध जीता, और फिर हम सबको जो भगवद गीता का ज्ञान इस एक श्लोक के द्वारा भगवान हमें दिए, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कृपणता के वजह से, कार्पण्य का अर्थ है कृपणता के वजह से दोष उपहत, मेरे अंदर ये हृदय का दौर्बल्य आ चुका है। दोष उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव बहुत दुर्बल हो चुका है। अर्थात अर्जुन ये जो पहला वाक्य है इस श्लोक का, इसमें अपनी मानसिक परिस्थिति बता रहे हैं। वीकनेस ऑफ द हार्ट, दोष उपहत स्वभाव। प्रच्छामि, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं। त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं जो भ्रमित हो चुका हूं मेरे धर्म के विषय में, कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी। यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहितं मे, आप निश्चित रूप से आप मुझे जो मेरा वास्तविक श्रेय है वो बताइए। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, और मैं प्रपन्नता अर्थात शरणागति आपके सामने अपनी प्रस्तुत करता हूं एक शिष्य के रूप में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आज का श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए अन्य श्लोकों से कैसे भिन्न है। हाँ, अर्जुन खुद को शिष्य कहला रहे हैं, ये एक भिन्नता हम देख रहे हैं। अर्जुन शरणागति अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। और कुछ? एक शब्द है इस श्लोक में, आज के श्लोक में। कृपया करके आप यदि आपके सेलफोन स्विच ऑफ कर दें तो अच्छा रहेगा। एक शब्द है आज के श्लोक में, ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूं। पृच्छामि, हाँ खैर उससे पहले पृच्छामि है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी। हालांकि ये सब कुछ आप जो बोल रहे हैं बहुत ही वाजिबी कारण है जो भिन्नता ला रहे हैं अर्जुन के पिछले श्लोकों में जो अर्जुन कहे और ये आज का। हाँ, अर्जुन की शरणागति, अर्जुन जो अब धर्म सम्मूढ़ चेतना में चले गए हैं वो, और श्रेयस्कर क्या है ये पूछ रहे हैं अर्जुन। शिष्य अपने आप को बता रहे हैं, परंतु ये जो शब्द है ना पृच्छामि, पृच्छामि से ये समझ में आता है कि अब तक अर्जुन भगवान को बता रहे थे, पूछ नहीं रहे थे। आप समझते हैं, किसी को कुछ बताना और किसी से कुछ पूछना, दोनों में बहुत अंतर है। जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम थोड़ा ऊंचे स्तर पे रहते हैं, है ना। चलो बैठो, मैं बताता हूं तुमको, बैठो। कई बार आप देखो, कई लोग आलीशान गाड़ी में बैठे, मर्सिडीज गाड़ी में बैठे, कोई रॉल्स रॉयस में बैठा है, लेकिन पता नहीं कहां जा रहा, पता पूछ रहा है। तो वो बैठा होगा 4-5 करोड़ की गाड़ी में, लेकिन एक पान टपरी की दुकान पे से किसी को पूछता है कि भाई बताओ ये इंदिरा नगर कहां है। तो अब ये पूछ रहा है इंदिरा नगर कहां है, अब वो जो लगा रहा है कथा और जो कुछ पान पे, अब उसका मूड देखिए तुरंत कि ये मुझे कुछ पूछा है, चाहे कोई भी गाड़ी में बैठा हो, मुझे पूछ रहा है ना, मैं बताऊंगा अभी से, मेरे बताए बिना ये पहुंच नहीं सकता। तो तुरंत उसका टोन आप यदि सुने तो उसका टोन थोड़ा, अब यहां से ऐसे जाइए, वहां से ऐसे जाइए, आप थोड़ा साइड में पहले यहां पे आइए। तो जब कोई किसी को कुछ बताता है तो वो बताने का टोन, वो अंदर की धारणा बताने की, वो सब कुछ उसके साथ आता है। और जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ पूछता है तो अपने आप उस प्रश्न के साथ नम्रता, शिष्यता, ये सब दिखाई देती है। तो यहां पर अर्जुन में तुरंत इस श्लोक में अर्जुन का टोन बदल चुका है। हालांकि हम अर्जुन का जो टोन है एग्जैक्ट वो अभी सुन नहीं पा रहे, परंतु शब्दों से पता लग सकता है कि अर्जुन का क्या टोन रहा होगा इस श्लोक में, अब तक क्या टोन रहा होगा और इस श्लोक में अर्जुन का क्या टोन है, पूछ रहे हैं। तो जैसे ही, क्योंकि अब तक अर्जुन भीष्म द्रोण इन सब की तरफ देख रहे थे, देखो ये भीष्म, देखो ये द्रोण, में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह दिखा रहे हैं भगवान को, ये सारे मेरे सगे संबंधी, और बता रहे हैं धर्मशास्त्र से कि मुझे क्या करना चाहिए इनके संदर्भ में। अब तक भगवान की तरफ अर्जुन ज्यादा देख नहीं रहे थे, भगवान को दिखा रहे थे। अब है क्या कि भगवान, तो स्थिति कौन सी है, भगवान कौन सी स्थिति में बैठे हैं, एक सारथी, एक सारथी की जगह पर बैठे हैं, और सारथी की जो जगह है वो थोड़ी नीचे होती है, रथी की जगह से नीचे होती है। तब अर्जुन रथी की जगह पर, अर्जुन हालांकि अभी बैठ चुके हैं अर्जुन, परंतु फिर भी रथी का जो आसन वो सारथी से ऊंचा होता है, और वहां से वो भगवान को बता रहे हैं, देखो ये लोग सब, इनको मारने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। परंतु इस श्लोक में अब अर्जुन भगवान की तरफ देख रहे हैं, इन सबको देखना छोड़ दिया, क्योंकि इन सबको देख देख के ज्यादा भ्रमित हो रहे थे। तो अब और कोई नहीं सूझ रहा किसकी तरफ देखे, किसकी तरफ मुड़े, इसलिए अर्जुन अब भगवान की तरफ देखते हुए, उन्मुख होते हुए ये श्लोक कहे हैं। इसलिए अर्जुन की स्थिति दो शब्दों में हम कह सकते हैं, धर्म सम्मूढ़ और पृच्छामी। अब इन दोनों का संबंध क्या है इस श्लोक में? धर्म सम्मूढ़, इसका अर्थ मैं आपको बताया कि अपने धर्म के विषय में भ्रमित हो गए अर्जुन, ये एक अर्थ है धर्म सम्मूढ़ का, अपने धर्म, अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित हुए अर्जुन। दूसरा अर्थ धर्म सम्मूढ़ का यह है कि इतना धर्म बोलने के वजह से भ्रमित हो गए। आपको समझ में आना दोनों में अंतर? क्योंकि धर्मशास्त्र से अब तक प्रथम अध्याय में जो कुछ अर्जुन ने तर्क प्रस्तुत किए वो सब धर्मशास्त्र से थे, तो इतना धर्मशास्त्र बोल बोल के भ्रमित हो गए, इसलिए पृच्छामी, कि मैंने जो इतना धर्म आपको सुनाया, इतना धर्म सुनाने के बाद मैं भ्रमित। इसलिए ये जो दो शब्द हैं इस श्लोक के, इससे क्या समझ में आ रहा है कि यदि कोई धर्म को भी जानता हो, जैसे अर्जुन धर्म को जानते थे, चाहे कोई कितना भी धर्म को जानता हो, सारे धर्म शास्त्र उसने पढ़ लिए, वो कहते हैं एट द बैक ऑफ द पाम, सब कुछ उसने पढ़ लिया, ज्ञान हासिल कर लिया, परंतु यदि गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, किसी काम का नहीं, वो केवल वो ज्ञान उसे भ्रमित करेगा। ये बहुत आवश्यक है जानना कि अर्जुन अब तक जो धर्म सुनाए बताए, उस धर्म के वजह से अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, उस धर्म को सुनाने के वजह से। तो क्या ये प्रश्न कोई पूछे हमसे, तो क्या धर्म नहीं सुनाना चाहिए? क्योंकि धर्म सुनाने से यदि भ्रमित हो रहा है कोई अर्जुन जैसे, तो फिर छोड़ो ये सब, क्या धर्म किसको सुनाया, क्यों सुनाए, क्यों भ्रमित हो, उपाय क्या है? गुरु की शरण या गुरु के निर्देशन में जो धर्म को समझता है या सुनाता है या पालन करता है। इसलिए पृच्छामि, अब असली धर्म के विषय में अर्जुन पूछ रहे हैं असली गुरु को, जगत गुरु को। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति इस स्थिति तक नहीं पहुंचता, तब तक वास्तविक धर्म उसे कभी समझ में नहीं आ सकता। जो अभी भगवान वास्तविक धर्म शुरू करेंगे सुनाना, वो तभी सुनाना शुरू किए भगवान, जब भगवान ने देखा कि इसने जो अपनी खिचड़ी पकाई, अर्जुन ने जो अपनी खिचड़ी पकाई, उसमें अब तक गुरु का छौंक नहीं लगाया है ना, खिचड़ी में छौंक लगाना बहुत आवश्यक है ना। तो अपनी खिचड़ी पकाने के बाद अर्जुन ने थोड़ा चखा, लेकिन कोई रस नहीं आया। तो अब भगवान के सामने कि भगवान आप इसको, इस पे छौंक लगाए, भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो पूरी बाकी की गीता क्या है, भगवान श्री कृष्ण का तड़का। कई बार आप देखो तड़के के वजह से पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है ना, सही बात है कि नहीं? और हालांकि मेन जो आइटम है उसमें समझ में नहीं आता कि कितना कैसे तड़का लगाया गया है। इसलिए आप देखिए जो कई बार बहुत अच्छे कुक होते हैं ना, उनसे आप सीखने जाइए कुछ आइटम, तो आप बाकी सिखा देंगे कैसे उबालना ये सब वगैरह। मेन तड़के का टाइम आएगा तभी आपको कुछ लाने भेजेंगे, वो चम्मच लेके आए वहां से, वो ट्रेड सीक्रेट नहीं बताना चाहते वो, क्योंकि असली कारीगरी उसके वो तड़के में ही है। तो यहां पर ये स्थिति है, इसलिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि अर्जुन इतना धर्म सुनाने के पश्चात कह रहे हैं धर्म सम्मूढ़, मैं अपने कर्तव्य, अपने धर्म के विषय में भ्रमित हुआ और इतना धर्म सुनाने के वजह से भ्रमित हुआ, इसलिए पृच्छामि, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, शाधि माम त्वम प्रपन्नम। प्ले बटन दबाओ, शुरू कीजिए आप। तो आज के श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण शब्द, आज का श्लोक हमने जैसे वो बायोलॉजी में बोलते हैं डाइसेक्ट किया है पूरा, एक एक शब्द, क्योंकि एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है आज के श्लोक का कि उसे समझना बहुत आवश्यक है, और एक एक शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर है या दूसरा शब्द पिछले शब्द पर निर्भर है, अर्जुन ने जो श्लोक कहा है उस पर। तो सबसे पहले कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ अर्जुन कहते हैं मेरी कृपणता, कृपणता, इसकी चर्चा हमने पहले भी बहुत बार की है। कृपणता आप लोग जानते हैं, कंजूसी, दोषो। यहां पे अर्जुन कहते हैं मेरे हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम। हालांकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन ये तुम्हारा हृदय दौर्बल्य है, परंतु यहां पर अर्जुन वही भगवान श्री कृष्ण का कथन फिर से भगवान को सुना रहे हैं। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में भ्रम, पृच्छामि परिप्रश्न। और भी शब्द हैं, पहले हम इस स्लाइड पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्पण्य। अर्जुन अब स्वयं बोल रहे हैं, यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह श्लोक अर्जुन द्वारा कहा गया, तो अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि मैं कृपण हूं। समझ गए अर्जुन, समझ गए कि उनकी कृपणता क्या है। कृपणता, इसका क्या अर्थ होता है? कृपणता का अर्थ क्या होता है कि जिसके पास बहुत कुछ है परंतु उसे खर्चता नहीं, वो है कृपण। और इसके विपरीत है ब्राह्मण, बृहद हृदय वाला ब्राह्मण, जो कि हर समय बांटता है। तो यहां पर अर्जुन की कृपणता ऐसे समझी जाएगी कि अर्जुन केवल मैं, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे सगे संबंधी, ये सब कुछ मुझसे संबंधित जो कुछ है, इसे कहते हैं कृपणता, मैं और मेरा। तो अर्जुन समझ गए कि ये मैं और मेरा, मैं इतना कर रहा हूं, इसके वजह से मैं भ्रमित हो रहा हूं। तो कृपणता से अर्जुन कहते हैं हृदय दुर्बल बनता है। अर्थात अर्जुन हमें यह सिखा रहे हैं कि जिसके हृदय में कृपणता है उसका हृदय बहुत दुर्बल हो जाता है। क्या समझे इसे हम, कि जितना हम मैं और मेरा इस भावना में रहेंगे, देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, जितना हम इस भावना में रहेंगे उतना हमारा हृदय वो दुर्बल बनता जाता है। अर्जुन यहां पर कहते हैं उपहत स्वभाव, कि मेरा स्वभाव इस दोष से भर चुका है, ये जो हृदय मेरा दुर्बल। जस्सी हु इज मेकिंग दैट साउंड। तो यहां पर जो देहात्म बुद्धि अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं और अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे देहात्म बुद्धि के वजह से मैं पहचान पा रहा हूं कि मेरे अंदर ये दोष, मेरे स्वभाव में ये दोष प्रस्तुत हुआ है। तो अर्जुन जब कहते हैं कार्पण्य, तो कार्पण्य के वजह से दोष उपहत स्वभाव, और उसके वजह से धर्म सम्मूढ़ चेता, उसके वजह से मैं अपने कर्तव्य के विषय में पूर्ण रूपेण भ्रमित हो चुका। तो जब ये तीन स्थिति किसी के जीवन में आती है, तब पृच्छामि, तब अगली स्थिति। तो यहां पर ये ध्यान में रखिए कि ये जो चार स्थितियां हैं, ये एक के बाद एक, ये आत्मनिर्भर है ये स्थितियां। कृपणता के वजह से हृदय दुर्बलता, हृदय दुर्बलता के वजह से कर्तव्य में भ्रमित हो जाना, कर्तव्य में भ्रमित होने के बाद व्यक्ति यदि पृच्छामी पे नहीं आता, तब फिर वो उसकी स्थिति और भयावह हो जाती। तो अर्जुन का सौभाग्य क्या था कि वो जो पहले तीन शब्दों की स्थिति है अर्जुन की, उसके पश्चात अर्जुन पृच्छामि पर आए, प्रश्न पूछे, परिप्रश्न। अब देखिए यहां पर अर्जुन का प्रश्न, यह कहा गया है कि धर्म के संदर्भ में कर्तव्य, उनके कर्तव्य के संदर्भ में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। इसलिए ये जो अर्जुन का जो परिप्रश्न था, वो कर्तव्य, अर्जुन कहते हैं कि मुझे केवल ये नहीं सुनना अब आपसे, यह श्रेय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे केवल यह नहीं सुनना कि मुझे अभी क्या करना है। अर्जुन कहते हैं श्रेयस्कर क्या है मेरे लिए, वास्तविक श्रेय क्या है मेरे लिए, मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं। तो यहां पर अर्जुन ये जो रणभूमि पर खड़े हैं ना, उस रणभूमि के दायरे से बाहर जा रहे हैं जब अर्जुन ने पूछा श्रेय। और उसके पश्चात अर्जुन कहते हैं निश्चितम ब्रूहि, कि मैं जो इतने सारे तर्क प्रस्तुत किया हूं, उन एक एक तर्क को आप आपकी दृष्टिकोण से मुझे समझाइए और निश्चित रूप से समझाइए। मुझे आप ऐसे मत समझाइए मुझ पर दया करते हुए कि पता नहीं ये समझ पाएगा कि नहीं, ये झेल पाएगा कि नहीं। कई बार गुरु जो हैं शिष्य की स्थिति देखते हुए कि ये पता नहीं मेरे आदेश झेल पाएगा कि नहीं, इसलिए केवल मैं साधारण से आदेश देता हूं। अर्जुन कहते नहीं, मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं, मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं निश्चितम। और भगवान मानो पूछे कि भाई तुम मुझे इस प्रकार का लाइसेंस दे रहे हो कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें आदेश दूं, लेकिन यह हमारा संबंध क्या है? पहले कुछ संबंध स्थापित होना चाहिए ना कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें कुछ आदेश दूं। तो अर्जुन कहते हैं शिष्यस, आप संबंध पूछना चाहते हैं, मैं आपका शिष्य अभी इसी वक्त। ये जो मैं आपका मित्र बना हुआ था वो सब भाड़ में, अभी मैं आपका मित्र नहीं, कुछ भी नहीं, मैं केवल आपका शिष्य। तुम ये मानो भगवान में और अर्जुन में डायलॉग चल रहा, भगवान पूछे तुम भाई अचानक मुझको पूछना शुरू किए, तो अब तक तो बता रहे थे, अब अचानक पूछना शुरू किए, और वो भी बोलते हो कि निश्चित रूप से, वो भी कहते हो कि मुझ पर शासन कीजिए, शाधी माम, कि मुझ पर आप शासन कीजिए। अर्थात यहां पर अर्जुन ये संकेत दे दिए हैं कि वो जैसे आप देखो कहीं डस्टबिन के ऊपर लिखा जाता ना यूज मी लिखा जाता ना, यूज मी आजकल इंडिया में वो डस्टबिन उठा के ले जाते हैं, वो यूज मी कर कहने के लिए कहा गया था, वो डस्टबिन उठाने के लिए नहीं बोला था। तो यहां पे अर्जुन मानो अगला जो शब्द अर्जुन ने इस्तेमाल किया शाधी माम, अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो भी कहेंगे ना, जो करिष्य वचनम, तो 18वें अध्याय का श्लोक में जो ये शब्द है करिष्य, कि मैं जो कुछ आप कहोगे वही करूंगा, उसी प्रकार का ये शब्द है कि मैं करूंगा, आप मेरे ऊपर शासन कीजिए, मैं उसी के योग्य हूं, उसके अलावा अब मेरे सामने और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप हैं, आपको जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आप यदि मेरे ऊपर शासन करेंगे तो मैं सही पथ पर, ये जो भ्रमित अवस्था है धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में, इससे मैं बाहर निकल पाऊंगा। इसलिए प्रपन्नम, मानो भगवान पूछे कि भाई मैं ऐसे थोड़ी मुंह खोलता हूं अपना, भाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, मेरे पास भी मेरा कोई राइट है भाई, ऐसा थोड़ी मुंह खोलूंगा, किसी के सामने थोड़ी मैं अपना मुंह खोलूंगा। तो अर्जुन कहते हैं प्रपन्नम, मैं केवल आपका शिष्य नहीं, केवल एक शासित शिष्य नहीं, मैं आपका शरणागत, पूर्ण शरणागत शिष्य हूं। तो यहां पर अर्जुन अब ये पूरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करते हुए कहे हैं। अब यहां पर कोई भीष्म पितामह, कोई द्रोणाचार्य, कोई दुशासन, कोई दुर्योधन, कोई हस्तिनापुर, कोई बीच में नहीं आ रहा उनके मन में, उनके मन में केवल एकला कृष्ण, केवल भगवान श्री कृष्ण ही उनके मन में आए हैं। इसे कहते हैं शरणागति। और ऐसी शरणागति अर्जुन ने जो प्रस्तुत की, इसके वजह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुनाए। तो ये जो हमने इस श्लोक के श्रृंखला द्वारा शब्द लिए, आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो सीरीज में जो अर्जुन शब्द इस्तेमाल किए हैं, जब तक कि वो स्थिति, वो श्रृंखला हमारे जीवन में नहीं आती, तब तक भगवद गीता नहीं समझ में आएगी। तो हमें अब अर्जुन को रथ से बाहर निकालकर अपने आप को रथ पर चढ़ाना है। वो तो अच्छा लगेगा ना, अर्जुन के रथ पर चढ़ना, लेकिन किस लिए? गीता सुनने के लिए। अर्थात वो बोलते हैं पुटिंग आरसेल्स इन द शूज ऑफ अर्जुन, कि हां कृपणता, मेरे जीवन में मेरी कौन सी कृपणता है ये पहचानना। अर्जुन के जीवन की कृपणता अर्जुन ने खुद बोल दी, तो हमें अब बोलना है भगवान के या भगवान के प्रतिनिधि के सामने, गुरु के सामने, कि हे गुरुदेव, कि मेरी कृपणता क्या है। अर्थात कृपणता के वजह से जो मेरा हृदय इतना दुर्बल हो चुका है वो क्या है। उसके पश्चात मैं पूछ रहा हूं, प्रच्छामी, तो परिप्रश्न होना चाहिए श्री गुरु के सामने। उसके पश्चात क्या परिप्रश्न होना चाहिए? कि मुझे केवल आप ये मत बताइए कि मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, हा? आजकल लोग प्रश्नों की जब बात आती है, मुझे याद है एक मैं सेमिनार लिया संगमनेर में सेमिनार था, और इसमें मैं पॉइंट्स बोल रहा था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, असली श्रेय क्या है। तो अक्सर सेमिनार के बाद स्टूडेंट्स आके अपने पर्सनल प्रश्न पूछते हैं, तो मैंने देखा कि एक स्टूडेंट, वो कुछ एक घंटे से वेट कर रहा था एक मुझे पूछने के लिए कुछ, तो मेरी नजर थी उसके ऊपर, बाकी सब सेमिनार के बाद आके अपने अपने प्रश्न पूछे कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, उसके बारे में क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, ये वो सब। तो मैं देखा कि ये एक घंटे से रुका हुआ है, तो कुछ इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि इतना पेशेंस इसके अंदर कि बाकी सब अपना पूछ पूछ के जा रहे हैं, ये रुका हुआ अकेले में पूछेगा मान। तो एक घंटे बाद ये आता है सामने और पूछता है, आप तिलक कैसे लगाते हैं? एकदम स्ट्रेट कैसे जाता है दोनों? मैं स्केल यूज करता हूं। वो था ना, मैं इतना बड़ा फुग्गा फुगाया था और इसने एक वो टाचनी मार के सारी हवा निकाल दी। एक बार एक विद्यार्थी पूरे सेमिनार के बाद मेरे को प्रश्न पूछता है, क्योंकि सेमिनार के पहले वो इंट्रोड्यूस भी करते ना, तो सेमिनार के बाद वो प्रश्न पूछता है, आप मुझे टिप्स देंगे फाइटर पायलट कैसे बनना चाहिए? एक ने तो यहां तक पूछ दिया कि मुझे टेनिस का लाइसेंस चाहिए, टेनिस सिखाएंगे आप टेनिस? एक कहता आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्लासेस लेंगे? इंग्लिश क्लासेस। ये देखिए यहां पे हम अर्जुन के प्रश्न पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे। अर्जुन ने इस प्रकार के कोई प्रश्न भगवान को पूछे नहीं, काउंट करके बताओ भगवान कितने हैं वहां पे सामने। तो जब परिप्रश्न का बात की बात निकलती है या परिप्रश्न का प्रश्न उठता है, तो ये पृच्छामि श्रेयस्कर, जो सबसे श्रेयस्कर हो, मेरा वास्तविक श्रेय क्या है, ये आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने विकल्प रखिए, ये वो, ठीक है अर्जुन, ये भी वो भी नहीं, निश्चित रूप से मैं जानना चाहता हूं आप कैसे मेरे ऊपर शासन कर कर मुझे, अर्थात इंग्लिश में जिसे कहेंगे बी रूथलेस ऑन मी, डोंट बी कंपैशनेट, बी रूथलेस ओ कृष्णा। तो जब तक हम इस सड़क से नहीं गुजरेंगे, तब तक हमारा गंतव्य स्थान जो शरणागति है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब इस श्लोक को तीन भागों में विभाजित किया है, जिसके अंदर समझ में आता है कि हमारी स्थिति, हम कैसे उसका परीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहला भाग इस श्लोक का है अर्जुन की वास्तविक स्थिति का परीक्षण, अर्जुन का सौभाग्य क्या? अर्जुन का सौभाग्य कि वहां पर सबसे निकट अर्जुन के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही थे। ये मानो ऐसा हो गया कि आप मिस्टर बिरला का बंगला ढूंढ रहे हैं और आपने मिस्टर बिरला को ही पूछ लिया, है ना? मिस्टर बिरला का बंगला ढूंढते हुए मिस्टर बिरला को पूछ रहे हैं कि आपका बंगला कहाँ है। तो वो अर्जुन का सौभाग्य। देखिए, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि कलयुग में लोग अपने स्थिति का परीक्षण कर लेते हैं, परंतु इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि ऐसे ढोंगी मिल जाते हैं उनको जो उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए ही जी रहे हैं। कलयुग में लोग जा रहे हैं अंधाधुन, प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि मेरी ये स्थिति है, मैं इस दुखद अवस्था में हूं, परंतु पूछ किससे रहे हैं, उनका दुर्भाग्य ऐसा है। इसलिए कलयुग की परिस्थिति श्रीमद् भागवत में जो बताई है, इसमें कहा है प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। सब कुछ मंद है, परिस्थिति मंद, आयु मंद, स्मृति मंद, बुद्धि मंद, भाग्य भी मंद। ये सबसे दुर्भाग्यशाली चीज है कलयुग वालों के लिए कि ठीक है आयु कम होती, बुद्धि कम होती, स्मृति कम होती, धर्म समझने की क्षमता कम होती, परंतु यदि भाग्य अर्जुन की तरह किसी का होता तो उसका जो भविष्य वो उज्जवल होता। परंतु कलयुग में बहुत से प्रामाणिक अर्जुन हैं, परंतु प्रामाणिक कृष्ण नहीं मिल रहे उन प्रामाणिक अर्जुनों को। किसकी वजह से? दुर्भाग्य। तो जा रहे हैं ऐसे लोगों के पास कि बताइए मेरी ये परिस्थिति है, मैं कृपण, मैं हृदय दौर्बल्य मेरे अंदर है और मैं अपने कर्तव्य से भ्रमित, मेरा वास्तविक श्रेय बताइए। ये सब जाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु लोग ऐसे हैं, बैठे हुए हैं गुरु के पद पर, देते हैं ये लो एक भस्म, एक भस्म देते हैं, ये भस्म को खाओ, भस्म को खाओ, तुम भी भस्मसात हो जाओगे, तुम भी भस्मसात, मैं भी भस्मसात, चलो गुरु चोर चंडाल चेला नरक में जाए ठेलम ठेला। तो इस श्लोक का ये जो दूसरा भाग है जिसमें अर्जुन शरणागत हुए हैं जगत गुरु। अच्छा, मान लीजिए किसी को अपनी कृपण परिस्थिति भी वो पहचान ले और उसके पश्चात मान लो कि वो सौभाग्यशाली भी हो कि किसी प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आए, परंतु जो अंतिम अर्जुन की परिस्थिति या यहां पर यह देखा जा रहा है कि अर्जुन का सही चयन, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का सही संग किया, ये बहुत आवश्यक है जानना। कई बार हम सत्संग में भी आके बैठते हैं, हर हफ्ते, कई बार हर रोज, परंतु क्या हम सत्संग का सही लाभ ले रहे हैं? अर्जुन ने भगवान परम सत्य के संग का सही लाभ अर्जुन ने इस प्रकार से लिया। केवल प्रथम अध्याय के कुछ 40-45 श्लोक के पश्चात ये 6 श्लोक, 50-51-52 श्लोकों के पश्चात अर्जुन ने जान लिया कि ये जो परम सत्य यहां पर बैठे हुए हैं, इनका मैं संग नहीं ले रहा। मैं यहां वहां पूरा धर्म सुना दिया सारी दुनिया को, और सारी दुनिया को धर्म सिखाने वाले इधर बैठे, इनसे ही धर्म आया है। तो वो क्या कहते हैं, दिया तले अंधेरा, कि मैं अंधकार में और दिया यहां पर है। तो ये तीन भाग इस श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में समझना, हमारे साधक के जीवन में अर्जुन द्वारा कहे गए इस श्लोक के ये तीन भाग। हमारी वास्तविक स्थिति का परीक्षण हमें करना है, और फिर क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के इस सुंदर हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आए हैं, तो ये समझ लेना कि हमारा सौभाग्य, पता नहीं भगवान की कृपा के वजह से, किसी भक्त की कृपा के वजह से उजागर हुआ कि हम सही द्वार पर खटखटा रहे हैं। सही द्वार पर हमने खटखटाया, हमारे घर के द्वार पर खटखटाया। कलयुग में अक्सर होता है कि लोग खटखटा रहे हैं, कितने जन्मों से खटखटा रहे हैं, परंतु किसी और के घर पे, और फिर खटखटाते खटखटाते हुए जब द्वार खुलता है तो पता लगता है कि खुद का घर है ही नहीं। तो कुछ समय के लिए वो व्यक्ति बिठा देता है, परंतु फिर चलो बाहर, यहां पे आप रह नहीं सकते। तो हमारी परिस्थिति, हम ये जान सकते हैं कि हम कम से कम इतने सौभाग्यशाली हैं कि द्वार न खुला हो, परंतु कम से कम खटखटा रहे तो अपने घर पे ही। ये जो हम लोग इतना जप करते हैं, कीर्तन करते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का, ये है क्या? ये द्वार के ऊपर नॉकिंग, वी आर नॉकिंग ऑन द डोर बाय हाउ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे कि जीसस क्राइस्ट, उन्होंने बोला, क्रिसमस भी आ रहा है, जीसस क्राइस्ट ने उनके एक प्रवचन में उन्होंने कहा, नॉक द डोर शैल ओपन। तो ये नॉकिंग क्या है, ये द्वार पर खटखटाना क्या है, ये हमारा चैंटिंग। और हमको कुछ पता नहीं, हमको श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि ये द्वार है, इस द्वार पर तुम खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, खुलेगा, खुलेगा ये द्वार। कई बार दुर्भाग्यवश हम अपना धैर्य खो देते हैं और वो खटखटाना थोड़ा बंद करते हैं। तो होता क्या है कि भगवान थोड़े पास में आए, दरवाजा खोल लेंगे, फिर देख रहे हैं कोई खटखटा ही नहीं रहा, तो वापस चले जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य कम से कम इतना तो है कि हम अपने घर के द्वार पर, इसलिए प्रभुपाद कहा करते हैं, वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। केवल घर नहीं, ये नहीं कि केवल मंदिर में आने वापस घर जाना, वो नहीं, जो यहां का घर हमें जाना है, बैक टू गॉड हेड, अवर रियल होम। तो वो सौभाग्य हमें श्रील प्रभुपाद हमारा बना के दिए। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने जब उनको पूछा कि व्हाट क्वालिफिकेशन डिड वी हैव दैट यू गेव अस द अल्टीमेट ऑफ ऑल फिलोसफीज एंड लाइफस्टाइल, प्रभुपाद ने कहा, आई क्रिएटेड योर क्वालिफिकेशन, आई क्रिएटेड योर फॉर्च्यून, यू डिडंट हैव एनी। तो हमारे अंदर कोई सौभाग्य नहीं था, उल्टा सब दुर्भाग्य की कुंजी भरी हुई थी, और श्रील प्रभुपाद ने वो हमें सौभाग्यशाली बनाया। और इसके साथ फिर ये इस श्लोक का जो ये तीसरा भाग है चयन, कि हम इस्कॉन में आने के बाद भी क्या चुनते हैं। हां, इस्कॉन में आने के बाद हम बहुत कुछ चुन सकते हैं, प्रसाद प्लेट बहुत कुछ चुन सकते हैं, परंतु वास्तविक श्रेय हमें चुनना है। जैसे अर्जुन ने वास्तविक संग लिया भगवान श्री कृष्ण का, और वो है भगवत धाम में हमें प्रवेश मिले, शुद्धता, कृष्ण प्रेम, वैष्णव सेवा, इसे कहते हैं वास्तविक श्रेय। तो अर्जुन के द्वारा हम ये सीखते हैं इस श्लोक से। अब क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को शिष्य कह दिया है और अर्जुन ने अनाउंस कर दिया, मैं आपका शरणागत शिष्य, केवल शिष्य नहीं, ये ध्यान में रखना होगा कि इस श्लोक में अर्जुन ने जो एक शिष्य की योग्यता बताई है वो योग्यता शिष्य की होगी, तब जाकर वो होगा उसका ट्रांसमिशन, किसका, ज्ञान का ट्रांसमिशन, कृपा का ट्रांसमिशन होगा। तो गुरु और शिष्य का संबंध कुछ उदाहरण से समझ में आ सकता है, समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला उदाहरण, ये हम अर्जुन और कृष्ण के संदर्भ में उदाहरण लिए हैं। सबसे पहला उदाहरण है मधुमक्खी एवं पुष्प का क्या संबंध होता है, दूसरा उदाहरण है मछली एवं जल का संबंध, और तीसरा उदाहरण है गाय एवं बछड़ा। तो अच्छा, मैं आपसे यदि पूछूं कि आप लोगों को क्या समझ में आया इन उदाहरणों से, और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संबंध के उदाहरणों से क्या समझ में आया। ठीक है, पहला उदाहरण लेते हैं मधुमक्खी एवं पुष्प। मधुमक्खी जानते हैं ना आप लोग, कभी डंक मारे मधुमक्खी, मधुमक्खी का पुष्प के साथ क्या संबंध कुछ है, ऐसे ही संबंध है कि कुछ गहरा संबंध है, उसको नाम देखिए, उसको नाम क्या मिला है, केवल मक्खी नहीं, अभी मक्खी का संबंध पुष्प से क्या होता है, कुछ नहीं, मक्खी हम जानते हैं, मक्खी का संबंध पुष्प से कभी नहीं होता, वो मक्खी केवल कूड़ा करकट में, वहां पर उसका संबंध होता है, परंतु मधुमक्खी का संबंध पुष्प से, मधु के द्वारा, हनी, शहद, उसके द्वारा। तो यदि हम मधुमक्खी का संबंध पुष्प से पहचाने तो और क्या क्या इसमें हम पहचान सकते हैं इन दोनों के संबंध में, कि कौन किस पर निर्भर है, हाँ? अब तक मछली तो पहुंचे नहीं अभी, आप तो उड़ गए मधुमक्खी की तरह। दोनों का एक दूसरे से संबंध है, ठीक है, हम उसको आगे की स्लाइड में उसको हमने समझाया है, तो ठीक है, हम दूसरा लेते, मछली और जल। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो जीवन उसका पानी है, तो जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, यहां पे आपने देखा होगा कितनी मछलियां, तो बिना जल के, बिना पानी के वो मछली जी नहीं सकती। उसी प्रकार से एक शिष्य, अब यहां पर शिष्य की तुलना किससे की गई है, जल से कि मछली से, मछली से, जल की तुलना गुरु से। और पहले वाले उदाहरण में पुष्प हैं श्री गुरुदेव और मधुमक्खी हैं शिष्य, गाय एवं बछड़ा। इसके विषय में तो श्लोक है, कौन सा श्लोक है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संदर्भ में, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम महात दुग्धम गीतामृतम महात। इस श्लोक में कहा गया है कि पार्थ अर्जुन वो किसके समान है? वत्स, बछड़े के समान है। और हालांकि शास्त्र की तुलना इसमें गाय से की गई है और भगवान श्री कृष्ण की तुलना ग्वाले से की गई जो कि दूध निकाल रहे हैं। तो इसमें यह समझ में आता है कि ये जो दो उदाहरण, एक तो मधुमक्खी और गाय और बछड़े का उदाहरण यदि हम लें, तो इस दो उदाहरण से यह समझ में आता है कि मधुमक्खी जो शहद निकालती है किसी पुष्प से, वो किसके लिए? खुद के लिए नहीं, वो दूसरों मनुष्यों के लिए। जो मनुष्य वो शहद, हम लोग सब, हम लोग जो इतना वो शहद डाल डाल के इसमें उसमें खाते हैं पीते हैं, वो सब कुछ परिश्रम कठोर किसका है? मधुमक्खी का। जो दूध पीते हैं हम गाय का, वो गाय दूध देगी तभी जब बछड़ा होगा, बिना बछड़े के वो गाय दूध नहीं देती। तो पहले बछड़े से गाय का दूध निकलवाया जाता है और उसके पश्चात फिर हम मनुष्यों को वो गाय का दूध मिलता है। उसी प्रकार से अर्जुन माध्यम बने हमें भगवद गीता सुनाने के लिए, एक शिष्य की भूमिका जो उन्होंने निभाई। तो ये जो हम गुरु एवं शिष्य का संबंध देख रहे हैं, इसमें दो बातें इन उदाहरणों में हम देखते हैं, एक है प्रेम और दूसरा निर्भरता। देखिए, कई बार प्रेम देखा जाता है इस भौतिक संसार में, तथाकथित प्रेम, परंतु निर्भरता जब तक नहीं। निर्भरता का अर्थ है डिपेंडेंस, कि जैसे मधुमक्खी पुष्प के ऊपर डिपेंडेंट है और प्रेम भी है, जैसे मछली जल के ऊपर डिपेंडेंट है और प्रेम भी है, जैसे बछड़ा गाय के ऊपर डिपेंडेंट है और प्रेम भी है। तो जैसे ये तीनों निर्भर हैं इन सब के ऊपर और इसके साथ इनका प्रेम है, वैसे ही कृष्ण और अर्जुन का संबंध यहां पर इस प्रकार से है। तो गुरु और शिष्य का संबंध, ये दोनों का मिश्रण होना चाहिए। किसका मिश्रण? लव एंड डिपेंडेंस, ये दोनों होना चाहिए। केवल ये नहीं कि मैं हां गुरु से प्रेम करता हूं, लेकिन आप कितने डिपेंडेंट हैं वो गुरु के ऊपर। कई बार आप हम लोग देखते हैं कि कलयुग में लोग गुरु को अपना लेते हैं अपने जीवन में, परंतु गुरु को कैसे अपनाएं? जैसे वो ड्राइंग रूम में शेल्फ होता है ना, शेल्फ, शेल्फ में वो क्रॉकरी आइटम्स रखते हैं, उसको कभी यूज नहीं करते, केवल वो दिखाने के लिए होते हैं क्रॉकरी आइटम्स, और अलग अलग शोपीस शेल्फ में, शोपीस रखते हैं वो केवल दिखाने के लिए। तो कई बार हां यदि कोई पूछ ले आपने गुरु लिया, हां लिया, देखा शेल्फ में उनकी फोटो है, शेल्फ में ही लगते हैं फोटो, तो कोई शोपीस नहीं किसी को दिखाने के लिए। अब जैसे आप किचन में जाओ तो किचन में कोई चम्मच भी होगी तो हम उस पर निर्भर हैं, उस चम्मच के ऊपर। तो हमारे जीवन में गुरु की भूमिका उस प्रकार से होनी चाहिए, दैट वी शुड बी डिपेंडेंट, आवर लाइफ शुड बी डिपेंडेंट, स्पिरिचुअल लाइफ शुड बी डिपेंडेंट ऑन गुरु। निर्भरता, जैसे यहां पर यह भाव अर्जुन का प्रस्तुत हो रहा है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपके बिना इस भ्रमित अवस्था से बाहर आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। अर्थात जैसे कि एक मरीज डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वैसे यहां पर अर्जुन भगवान से प्रेम भी अपना और निर्भरता भी दिखा रहे हैं। अब अर्जुन इस श्लोक के द्वारा ये बता रहे हैं कि श्रवण करने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। हालांकि आप यदि भगवद गीता कुछ पढ़े होंगे तो ये तीन योग्यताएं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाद में सुनाई, जो कि अर्जुन ने अपने उदाहरण से दिखा दिया भगवान को। याद है किसी को कोई श्लोक? चौथे अध्याय में श्लोक है, चौथे अध्याय का श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि शिष्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि ये तीन चीजें, सेवा भाव, परिप्रश्न और शरणागति। अब भगवान ने यह श्लोक चौथे अध्याय में आगे चलकर कहा है, ये तीन योग्यताएं। तो मानो ये देखा जा रहा है कि भगवान अर्जुन को दिखाते हुए हम सबको बताते हैं कि देखो, अर्जुन जैसे सेवा भाव से शरणागत हुआ और परिप्रश्न इसने किया, वैसे एक शिष्य को गुरु के सामने इन तीन योग्यताओं के साथ प्रस्तुत होना है, तब जाकर श्रवण कर पाएगा। क्योंकि गुरु के मुख से जब तक वो श्रवण नहीं करता, तब तक वो गुरु का क्या फायदा उसके जीवन में। जैसे अर्जुन ने श्रवण किया, तो इस श्लोक में यदि हम देखें तो अर्जुन ने सेवा भाव, अपना सेवा भाव अर्जुन ने दिखाया। कैसे? अर्जुन ने कहा शाधि माम, कि आप मेरे पर शासन कीजिए और जैसे यूज मी, वो जो वर्ड हमने यूज किया था, यूज मी, इस्तेमाल कीजिए, अर्थात मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। और फिर शरणागति, अर्जुन ने कहा त्वम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हुआ हूं, कि जो कुछ अब आप कहेंगे या जो कुछ मेरा है, शरणागति का अर्थ है जो कुछ मेरा है मैं आपके सामने, जैसे खुले नोटबुक के जैसा, माय ओपन बुक, आई हैव केप्ट माय ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ यू, वैसे। और उसके बीच में परिप्रश्न, यहां पे यह समझना होगा भगवान ने भी जो चौथे अध्याय का श्लोक कहा तद्विद्धि प्रणिपाते ना, इसमें भगवान ने परिप्रश्न बीच में डाला है। सबसे पहले प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ है प्रपन्नम, शरणागति, और फिर परिप्रश्न और फिर सेवाया। इससे क्या समझ में आता है कि वो जो परिप्रश्न वो नम्रता पूर्वक होना चाहिए, ये नहीं कि चेक करें गुरु को कितना मालूम है, देखते हैं कितने श्लोक आते हैं चलो। वो उद्दंडता से प्रश्न नहीं होने चाहिए, जैसे यहां पर अर्जुन के जो प्रश्न है वो नम्रता से अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं। और परिच्छामी और परिप्रश्न का अर्थ है कि ऐसे प्रश्न जो हमें इस भवसागर से पार कराए, फिर से ऐसे प्रश्न नहीं कि गुरु से जाके पूछना आप तिलक कैसे लगाते हैं मुझे सिखाइए। अब देखिए यहां पर तो हम चर्चा कर रहे हैं जो वास्तविक श्रेय, इसके विषय में अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं। भौतिक संसार में श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर है, वो कहते हैं कि भौतिक संसार में क्या चल क्या रहा है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। कोई प्रश्न पूछ रहा है कितना है बटाटा, क्या किलो है, प्रश्न है, आटा कितना, ये कितना, वो कितना, उसका प्रश्न है और वो उत्तर दे रहा है बस। कोई जा रहा है यहां वहां, सब जगह प्रश्न उत्तर चल रहा है, और फालतू के चल रहे हैं ये सब प्रश्न उत्तर, जिसका कोई श्रेय किसी को नहीं मिल रहा है, पूछने वाले को भी नहीं और वो बताने वाले को भी कुछ नहीं। एक मैं जब कानपुर में था, ये 31st का टाइम आ रहा है, तो एक वहां पर वो 31st के लिए पूरे साल भर वेट करता, करना ही पड़ता है। लेकिन विशेष रूप से क्योंकि 31st में बहुत फ्री दारू मिलती पीने के लिए, तो वो एक बार 31st पूरी दारू में धुत, का नाम था भीमलाल, वो आया मेरे पास, मेरे को पूछता है पूरा धुत चढ़ी हुई है, पूछता है रुको रुको रुको, क्योंकि दिखाई नहीं, मैं तो रुका हुआ था, उसको लग रहा था कि मैं हिल रहा हूं, तो पहले तो कैसे करके मुझे रुकाया और मुझे पूछता है मुझे एक प्रश्न है, प्रश्न मेरा प्रश्न है, मैं नहाता हूं ना गीला हो जाता हूं, वाह परी प्रश्न सुना है इनका, मैं नहाता हूं तो गीला हो जा। मैंने कहा ठीक है, इसने जैसे प्रश्न पूछा वैसे उत्तर, तो मैंने कहा नल बंद करके नहाए कर। एक हमारे हमारे जो इंटरव्यू चल रहा था, एक SSB के इंटरव्यू में हमको एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न ये था कि राहुल डॉक्टर शर्मा का लड़का है, लेकिन डॉक्टर शर्मा राहुल के पिता नहीं। वाह ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मम्मी है। तो आप लोग भी भ्रमित हो गए थे कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, अचानक राहुल डॉक्टर शर्मा का बेटा है लेकिन डॉक्टर शर्मा राहुल के पिता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर शर्मा क्योंकि डॉक्टर शर्मा राहुल के दादाजी हैं। वो भी हो सकता है ना, नहीं नहीं वो थोड़ा गलत हो गया। तो यहां पर जब परिप्रश्न की बात आ रही है, तो ध्यान में रखना चाहिए कि अर्जुन ने एक एक शब्द जो इस श्लोक में इस्तेमाल किया है, पृच्छामि श्रेय, उनके प्रश्न है वास्तविक श्रेय उनका क्या है इसके संदर्भ में। इसलिए हमारे आचार्यों ने शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं, क्योंकि जब तक गुरु के सामने शरणागति नहीं तब तक ये जो ज्ञान है या जो विज्ञान है धर्म का, हमारे कर्तव्य का, ये नहीं आ सकता। सबसे पहला लक्षण शरणागति का जो अर्जुन भी दिखा रहे हैं, श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल आचरण करने का संकल्प लेना, इंग्लिश में कहेंगे एक्सेप्टिंग थिंग्स विच आर फेवरेबल इन वंस कृष्णा कॉन्शियसनेस, अनुकूल्यस्य संकल्प जिसे कहते हैं। तो शरणागति का पहला लक्षण यह है कि जो कुछ अनुकूल है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होने के लिए, जो कुछ अनुकूल है उसका पालन करना, संकल्प केवल जानना नहीं बल्कि संकल्प लेना अपने जीवन में उसको पालन करने का, यह सबसे पहला लक्षण शरणागति का। श्री कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल आचरण का त्याग। अब देखिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, नया साल, नए साल में लोग करते ना रेजोल्यूशन, संकल्प लेते हैं कि मैं संकल्प लूंगा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, केवल बीड़ी पीऊंगा। एक व्यक्ति ने ऐसा संकल्प लिया, मैंने बोला भाई तुमने तो संकल्प लिया था, सिगरेट पीने का संकल्प लिया था, नहीं पीने का। यहां पे जब हम नए साल की बात कर रहे हैं कि नए साल में संकल्प लेना, तो कैसा संकल्प? जैसे श्रील प्रभुपाद ने ये दो चीजें बताई, डूज एंड डोंट्स, किस चीज का त्याग करना और किस चीज को अपनाना। त्याग त्याग किसका करना है? वो चार नियम जो बताए हैं उसका त्याग करना, मांसाहार, नशा, जुआ, ये सब कुछ, इसका त्याग करना। और संकल्प किसका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और ये चार नियम जो दिए हैं, इसके द्वारा हम शरणागति के दो लक्षण को इतनी आसानी से पालन कर सकते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण की रक्षा में दृढ़ विश्वास। यहां पे जो 18वें अध्याय का श्लोक, प्रसिद्ध चरम श्लोक जिसे कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयी श्यामि मा शुचः, कि भगवान कहे सभी धर्मों को, ये तथाकथित तुमने जो धर्म सुनाए अर्जुन, इन सब को आग लगाओ और मेरी शरण में आओ, भगवान कहते हैं। तो ये दृढ़ विश्वास होना कि यदि भगवान की शरण में हम जाएंगे, श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण हमें सभी पापों से मुक्त कर हमें उनके धाम पहुंचाएंगे। तो इसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। ये एक शरणागति का लक्षण है, तीसरा लक्षण। चौथा, केवल श्री कृष्ण को अपना रक्षक स्वीकारना। इसके ज्वलंत तो उदाहरण द्रौपदी। द्रौपदी जब उस असत सभा में द्रौपदी के चीर हरण का प्रयत्न किया गया, तो द्रौपदी अलग अलग पहले जा रही थी, पांडव अपने पतियों के पास, भीष्म, विदुर, द्रोण, इनके पास जा रही थी। जब कहीं से कोई सहायता द्रौपदी को नहीं मिली, तब द्रौपदी ने अंततः अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब तक भगवान रुके हुए थे, भगवान देख रहे थे कि द्रौपदी अब तक पूर्ण शरणागति नहीं दिखाई है मेरे प्रति। अब तक द्रौपदी को आशा है कि द्रौपदी के पति बचाएंगे। कौन कौन? अर्जुन, भीम जैसे महारथी योद्धा बैठे हुए वहां पर। भगवान ने ये द्रौपदी के उदाहरण से देखा कि ये भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यदि किसी के पति भीम और अर्जुन जैसे भी हों, युधिष्ठिर जैसे भी हों, फिर भी भगवान ये बता रहे हैं कि जब तक श्री कृष्ण पर यह विश्वास न आए कि यही केवल केवल कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, तब तक भगवान की पूर्ण कृपा नहीं मिल सकती। तो द्रौपदी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि द्रौपदी ने अपनी शरणागति इस लक्षण से कैसे दिखाई, और श्री कृष्ण की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करना। ये हम सीखते हैं बलि महाराज। बलि महाराज, उनकी शरणागति बताया गया है आत्मनिवेदनम की परिकाष्ठा, की जो कुछ उनका था सब कुछ उन्होंने श्री वामन देव को अर्पित किया, और अंततः जब दो पग में वामन देव सब कुछ ले लिए, कुछ नहीं बाकी रह गया, तो बलि महाराज ने अपना सर अर्पित किया, मानो मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और अंततः अंतिम लक्षण पूर्ण शरणागति का है श्री कृष्ण के समक्ष दीनता का भाव, जो अर्जुन यहां पर, अर्थात नम्रता का भाव, जो चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में कहे हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदाहरि, कि जब तक ये नम्रता दीनता का भाव भगवान के सामने हम नहीं प्रस्तुत करते। तो ये जो छह लक्षण हैं, ये छह लक्षण हम देखते हैं अर्जुन की शरणागति में आज के इस श्लोक में, जिसके कारण, जिसके वजह से अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का शिष्यत्व स्वीकार किए और भगवान अर्जुन को भगवान खुद अर्जुन के गुरु बने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोड़ अर्जुन के जीवन में, अब ये जो हम गीता सुन रहे हैं या कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन जो भगवान के सामने अपना वियोग या अपनी अग्नि क्या शोकाग्नि प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें अर्जुन ने ये जो शरणागति दिखाई इस श्लोक में, इसके वजह से भगवान इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान अब तक अर्जुन के इस श्लोक के लिए रुके हुए थे। और आगे भी अर्जुन अब बताएंगे कि कैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, केवल भगवान श्री कृष्ण से ही चाहते हैं कि उनका वास्तविक श्रेय उनको बताए, वो जो उनका वास्तविक कर्तव्य, उनका वास्तविक धर्म क्या है वो बताएं। और अर्जुन ने अपने उदाहरण से हम सबको सिखाया है कि गुरु का हमारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। जैसे मछली के लिए जल, गाय बछड़े के लिए गाय, और जैसे एक मधुमक्खी के लिए पुष्प। तो ये है संक्षिप्त रूप में आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक का सारांश। किसी का कोई प्रश्न है?
Hare Krishna, what made Arjun come to this state of surrendering? He must have left something to surrender.
He must have learnt.
Left something.
He left his conception.
Because till
his ideology.
Till date he was arguing or putting forth arguments.
Yeah.
Or justifying himself. So what made him come to this surrendering stage? Because
whatever he was speaking about, his ideologies, जो भी प्रश्न ये है कि अर्जुन ने ये शरणागति के स्तर पर आने के लिए क्या त्यागा, क्या क्या वस्तु त्यागी अर्जुन ने, अपनी तथाकथित वो जो धारणा थी, उस धारणा को अर्जुन ने त्यागा कि मेरी अर्जुन कंसेप्शन वॉज दैट आई एम राइट, I am quoting Dharma Shastra, I am right, I am showing my compassion, but according to Krishna that was not compassion, that was weak heartedness. So what happens is that, you know, many times our conceptions are like always right. If you sleep, you are lazy. If I sleep, I am tired. Huh? If you eat, you are a glutton, aurat. And if I eat, I am hungry. That is called our conception which we carry. तो अर्जुन ने अपने ये जो गलत धारणाएं कि ये मेरा परिवार, ये मेरे पितामह, मैं इनको सब कुछ देना चाहता हूं, इनके बिना कैसे भोग करूंगा, ये सारे जो उसकी धारणाएं थी, उन धारणाओं को त्याग कर अर्जुन भगवान के सामने निर्वस्त्र, जैसे कहते हैं, ही स्टूड नेकेड इन फ्रंट ऑफ अर्जुन, इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, दैट यू क्लोथ मी नाउ, यू ड्रेस मी अप। सो इट वाज द कंसेप्शन व्हिच ही गेव अप एट दिस पॉइंट।
इन दिस स्टेज डिड ही लीव हिज एगो?
ओह या, डेफिनेटली। कंसेप्शन मींस ईगो, आई हैव अ सर्टन कंसेप्शन मींस दैट्स बिकॉज ऑफ ईगो। Ego gives it. Ego is the father of that. Goes without saying. और कोई प्रश्न है किसी का? परी प्रश्न? नहीं, यहां पर ज्ञान का कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं धर्म सम्मूढ़, मैं केवल भ्रमित नहीं हो रहा हूं, संभ्रमित हो रहा हूं। नहीं, इधर कंफर्मेशन नहीं करा रहे वो भगवान से। इस श्लोक में वो भगवान को कह रहे हैं कि मेरी कृपणता, वो बोल रहे हैं कि वो जो मैं अपना ज्ञान प्रस्तुत कर रहा था, वो मेरा ज्ञान नहीं, वो मेरी कृपणता थी, कार्पण्य। वो मेरी कृपणता थी, और वो कृपणता के वजह से दोष उपहत स्वभाव, उस कृपणता के वजह से मेरा हृदय इतना दुर्बल हो चुका है कि अब धर्म सम्मूढ़ मेरा कर्तव्य क्या है, और जो मैंने धर्म आपको सुनाया वो धर्म के वजह से मैं भ्रमित हो रहा हूं। सो इट वॉज आउट ऑफ डेस्परेशन, अगेन कंफर्मेशन इज अगेन सम ईगो इज देयर, सो देयर वॉज नो ईगो हियर, एब्सोल्यूटली नो ईगो। अर्जुन, दैट्स व्हाट आई सेड, अर्जुन इज कमिंग नेकेड, यू ड्रेस मी कृष्णा, आई हैव रिमूव द क्लोथ्स ऑफ दिस धर्म दैट धर्म दिस कंसेप्शन दैट आइडियोलॉजी ऑल ऑफ दैट, आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, निश्चितम ब्रूहितन में आप बताइए। और भगवान फिर भी, अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है कि भगवान ना बताए, तो अर्जुन बोलते नहीं, आई एम योर शिष्य नाउ, आई एम नो मोर योर फ्रेंड, आई एम नो मोर योर मित्र, आई एम योर शिष्य। व्हाट काइंड ऑफ शिष्य? प्रपन्नम, शरणागत शिष्य। एंड शादी माम, यू यूज मी, शासन कीजिए, यू नो आई एम अ स्लेव लाइक दैट। सो दैट्स व्हाट एल्स, यू नो ही डिडंट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड in order to express his disciplehood. Aur koi prashna? Theek hai. Announcements. Ek vishesh announcement main khud apne mukh se karna chahunga ki